सवाल पैदा होती है कि इबादत किसको कहते हैं, क्योंकि लफ्ज़ इबादत सुनते ही हमारे जहन में जाए नमाज आ जाता है और खाना काबा के तवाफ़ आ जाते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन याद रखिए कि असल इबादत या कुल्ली इबादत ये नहीं है। इबादत क्या है कि बंदा अपनी ज़ात को अल्लाह के गिर्द घुमा दे। बंदगी, इताअत, मोहब्बत, नाफरमानी का डर अल्लाह का हो। और इबादत का पहला दर्जा जो है ना, ये तौहीद है, अल्लाह को एक मानना। जैसे हम अपनी माँ के साथ किसी को शरीक नहीं करते ना, कि मेरी माँ, मैं दूसरी औरत को क्यों माँ कहूँ। कोई के आए, कोई माँ बाप दूसरी बीवी ले भी आए तो बच्चे अक्सर एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं ये आपकी बीवी होगी, हमारी माँ नहीं है। ये है बंदगी का पहला नुकता। अगर आपसे कल कोई पूछ ले कि बंदगी का पहला दर्जा क्या है या इबादत का पहला स्टेप क्या है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, एक है। पहले एक को मानेंगे, फिर आगे जाएगा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला को उसकी तमाम सिफात के साथ मानना। दूसरा दर्जा क्या होता है कि अल्लाह ताला की जितनी सिफात यानी एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें अल्लाह ताला इज यूनिक। यानी मिसाल है कि अल्लाह ताला रज़ाक है, तो हम ये नहीं कह सकते और भी कोई रज़ाक है। अल्लाह सुबहान तआला इज़ यूनिक इन हिज एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग अ रज़ाक। इसी तरह इंसान अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को आगे बढ़ता जाता है कि जिस तरह से उसको ये लगे कि अल्लाह ताला ही बंदे की ज़िंदगी में आ गया। जिसको कहते हैं ना कि वही मतलूब वही मकसूद, बंदे की ज़िंदगी के हर काम के पीछे तलब ये है कि मेरा रब मुझसे खुश हो। उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि मैं अपने रब को पालूं। आप ये कह लीजिए कि इय्याका नाबुदु में जो बात थी ना, आज उसी की फिर ताकीद है। एक जुमला लिख लें, कुरान का मौजू ये नहीं है कि अल्लाह को मानो, इसको तो अकल भी मानती है, इसको तो कायनात भी बोल बोल के मनवा रही है कि अल्लाह है। कुरान का टॉपिक क्या है कि अल्लाह को एक मानो, और वैसा मानो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अल्लाह ताला को अपनी मर्जी से कोई बुत, कोई हिजर, कोई शजर, किसी में उसका अवतार, किसी का परतो कर लेना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा या अय्युहन्नास उबुदू, ए लोगो इबादत करो। किसकी? रब्बकुम, अपने उस रब की। कौन सा रब? अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया। यहाँ 1 2 3 लगा लीजिए, ये दलाइल हैं अल्लाह की इबादत करने के। और ये सारे दलाइल काफ़ी नहीं है, सिर्फ इंसान को सोच दी जा रही है कि देखो तुम अल्लाह की बंदगी करो। क्यों करो? क्योंकि उसने तुमको पैदा किया। यहाँ सवाल पैदा होता है, अच्छा अगर अल्लाह मुझे पैदा ना करता या अगर अल्लाह ताला खालिक ना होता, तो फिर तो हम उसकी इबादत ना करते ना। आप इसका क्या जवाब देंगे? हम फिर भी उसकी इबादत करेंगे। इस पे बड़ा खूबसूरत लेक्चर मैंने बहुत पहले सुना था यासिर काजी का, कि उन्होंने तौहीद पे एक पूरी सेमिनार था, तो उसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया था कि बाज़ लोग कहते हैं बच्चों अल्लाह की इबादत करो क्योंकि उसने ये दिया वो दिया ये दिया। गलत तरीका है। एक तो पहली बात है कि हम बच्चों को लालची बना रहे हैं। जिस वक्त अगर बच्चे को कोई चीज़ ना मिली तो वो कहे आप मैं इबादत नहीं करता। दूसरा इसमें एक नुक्ता क्या निकला कि हम बच्चों को ये फीलिंग दे रहे हैं कि तुम अपनी ज़ात पे अगर अल्लाह की कोई नेमत देखो तो फिर उसकी बात मान लो, ना देखो तो ना मानो। फिर इसमें आप आगे भी जाके एक और चीज़ देख सकते हैं कि एक बंदा जब अल्लाह की बात सिर्फ इसलिए माने कि उसने मुझे पैदा किया, तो इसमें मैं भी तो हूँ ना, मैं अना अना को आप बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको पैदा कर दी इसलिए अल्लाह को माने। है, ये बड़ा बारीक नुक्ता है, सबको नहीं समझ आएगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ समझ लीजिए कि अल्लाह किसी एक मखलूक को पैदा ना करता, फिर भी सोबुदु रब्बा को, वो अपनी ज़ात में यकता। लई सका मिसली ही शयुन बहुवत समी अलीम, सूरह शूरा में आप पढ़ेंगे, उसकी तो मिसाल जैसा भी कोई नहीं। अल्लाह ये जहान ना बनाता, सूरज चांद सितारे पहाड़ फल फूल कुछ ना बनाता, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मतलब है। बड़ा अंदर का जुमला है अल्लाह की ज़ात को मानने का। तो गोया के वो तो अपनी ज़ात में है, लेकिन तुम इंसान हो ना, तुम्हें हमेशा चाहिए होता है कुछ बताओ कुछ दो लो, तो कहा तुम ज़रा देखो कि तुम्हारे पास कितने दलायल है उसकी इबादत करने के। अल्लज़ी खलक़कुम, उसने तुमको पैदा किया। देखिए, अल्लाह ताला के खालिक होने को आप कैसे समझें कि अल्लाह खालिक है। माँ बाप कौन होते हैं? सबब या जरिया तो बन जाते हैं बच्चे के दुनिया में आने का, लेकिन खालिक नहीं है। वरना क्या होता? अगर इंसान खालिक होते, कोई इंसानों में कोई और हस्ती खालिक होती जिनके बच्चे नहीं होते, वो पहुंच जाते उसके पास, एक बच्चा बना दो, फिर तो बच्चे बाजारों में बिकते, फिर तो वाकई मजारों पे से लोग बेटे बेटियां लेके ही आते हैं, ये लो इतने का लिया, ये गोरा ले लो, ये काला ले लो। तो ये तो नहीं मिलता, दुकाना तो नहीं मिलते पुत्र, ये अल्लाह देता है। अल्लज़ी खलककुम, और इस खलककुम लफ्ज़ में अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करें। हम इंसान अपने ऊपर लेके सोचे ना, हमें अपनी बनाई हुई चीज़ से बहुत प्यार होता है। कोई चीज़ जो आपने खुद कभी बनाई हो, कढ़ाई की हो, पेंट की हो, शिफ्टिंग में सारी चीज़ें फेंक देंगे, वो फिर उठा के रख लेंगे, नहीं ये मैंने बनाई थी, ये मैं अपनी बेटी को दूंगी, ये मैं अपने पोतों को दूंगी। चलिए, खुद बनाई तो छोड़ दीजिए, खुद खरीदी हुई चीज़ से ज़्यादा प्यार होता है उसकी निस्बत जो दूसरा दे दे, चाहे वो उससे 10 गुना भी अच्छी हो, क्योंकि उसमें इंसान का शौक और ज़ौक होता है। कभी आप सोचिए कि अल्लाह ने जिसने इतने प्यार से बंदे को बनाया, क्या वो उस बंदे को आग में डालना पसंद करेगा? कोई माँ अपने बच्चे को आग में डालना पसंद करती है? नहीं कर सकती, तो हम कहाँ कर सकते हैं? अल्लाह नहीं करेगा। अल्लाह ताला सूरत निसा में बिल्कुल 5वें पारे की आखिरी आयत में क्या कहता है? मा यफ़ुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, लोगो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुमको अजाब दे? उसने तुम्हें आग में डालने के लिए पैदा किया? नहीं, इन शकर तुम व अमन तुम, शर्तें दो ही हैं, तुम शुक्रगुजार बन जाओ, कदरदान बन जाओ, अल्लाह की नेमतों की कदर करो और ईमान ले आओ। वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह बहुत कदरदान और खूब जानने वाला है। फिर याद रखिए कि अल्लाह सिर्फ उन लोगों को आग में डालेगा जिनको ट्रैश समझेगा। हमें कभी ट्रैश को आग लगाते गुस्सा आया? कभी पुरानी चीज़ों को, जलाने वाली चीज़ें, खराब को पकड़ के बिन में फेंके कहते शुक्र है अल्लाह का घर साफ हुआ? तो याद रखिए, जो लोग इस दुनिया में बंदगी का हक अदा नहीं कर रहे, वो इस कायनात का ट्रैश है। और जहन्नुम के एक जलाने वाली जगह जिधर सारा कूड़ा करकट जला के रख दिया जाता है। इस जिंदगी में अल्लाह ताला मौके देता है कि सोबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलकुम, तुम्हें उसने पैदा किया, उससे प्यार करो, उसको देखो। और आप देखिए कि इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह हमें दूसरों से मांगने से रोकता है। आप किसी भी बच्चे की मिसाल ले लें, माँ से कहता है अम्मी मुझे 1 पाउंड दे, मैंने कैंडी लेनी है, माँ दे देती है, फिर दोबारा आ जाता है, फिर दोबारा आ जाता है, माँ नहीं देती, फिर वो बच्चा क्या करता है? देखता है कि अम्मी की दोस्तें आई हुई हैं, एक अब दोस्त के पास जाके कहता है आंटी प्लीज़ गिव मी 1 पाउंड प्लीज़। क्यों? वो अम्मी नहीं दे रही। अब आंटी क्या, अच्छा मेरा बेटा लाओ परस दो। अब आप बताइए, अगर माँ की नज़र पड़ गई उस बच्चे पे ये मांगते हुए और उस आंटी पे उसको देते हुए, तो फिर माँ घर जाके उस बच्चे का हाल क्या करेगी? और शर्म कितनी आएगी उसको, जूता पकड़ लेगी कि क्या मैं तुम्हें नहीं देती। और चलिए, यहाँ तो माँ की दोस्त से मांगा है ना, आप मिसाल ले लीजिए कि किसी ऐसी सिस्टर से जाके बच्चा मांगे जिसके साथ माँ का कुछ मिजाज बिगड़ा होता है, कुछ शरीक है, जिसने शुक्र किया कि इसका बच्चा मुझसे मांगे और मैं एक के दो दूं, और जाके पूरे खानदान में उसको बदनाम करूं कि देखो कितनी जालिम है, ये अपने बच्चे को पैसे भी नहीं देती। बस यही शिर्क है। जब एक माँ नहीं बर्दाश्त करती कि जब मैं जो कहती हूँ मैं तुम्हें देती हूँ, चले मिसाल माँ और बच्चे की ना भी समझ आए ना, तो शौहर बीवी की ले ले। कितना भी ठंडे से ठंडे मिजाज का शौहर हो ना, अपनी ज़रूरत अपनी हैसियत से बीवी को दे भी रहा हो और बीवी उसके दोस्त से कहे ज़रा 50 पाउंड तो दे दे, ये घर का खर्चा नहीं पूरा देते, आप बताइए घर बसेगा? और शौहर का हक क्या बीवी पे? सिर्फ चंद बोल बोल के कहा है ना कि मैं इसकी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, लेकिन सोबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलकुकुम, उस खालिक को छोड़कर दूसरों से मांगोगे तो बताओ तुम उसको अच्छे लगोगे? जब खालिक वो है तो मालिक भी वही है, खल्क उसकी तो अमर भी उसका। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह खालिक तो है लेकिन अब ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता, नाउज़ बिल्ला। ये सारी डिटेल्स आगे जाके आप साथ साथ लिखते जाएंगे, अभी शुरू में सारी दे दी तो आपके लिए टू मच होगा। लेकिन याद रखिए कि बास लोगों ने ये सोचा कि अल्लाह ने दुनिया बनाई तो है लेकिन अब वो इसके निज़ाम नहीं चला सकता, नौजुबिल्ला, इसलिए उसने बुज़ुर्गों को दे दिए। अभी ये एक आयत आ रही है जिसमें सबसे बड़े बुत जिसकी वजह से लोग अल्लाह का हुक्म नहीं मानते उसका तذکرہ, और वह बा परस्ती है।